हमने ध्वनि के दो भेद को लास्ट में पहले पाठ में बताया था कि ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक प्राकृत ध्वनि और एक वैकृत ध्वनि। ये आपने पहली बार सुना होगा, इससे पहले आप स्फोट सुनते थे, ध्वनि सुनते थे, लेकिन ध्वनि के भी दो भेद हैं, वो पहली बार आप सुन रहे हैं। तब इसको थोड़ा समझना है कि जब वो विवक्षा होती है वक्ता की, बोलने की इच्छा होती है, तो फिर प्राण वायु जो है वह नाभि देश से चल करके कंठ देश तक आता है, और फिर वहाँ पर जो है ना कंठ देश से बाहर आकर मुंह में आता है, मुंह में आकर के वो फैल जाता है मुंह में, और फिर जो तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उन सबों से टकरा टकरा करके वहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है। वह जो प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है ना, सबसे पहली वाली जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी का नाम है प्राकृत ध्वनि। और वह जो प्राकृत ध्वनि है, प्रथमतः उत्पन्न होने वाली ध्वनि, वह वर्णात्मक होती है, वर्ण के रूप में होती है। और वही जो प्राकृत ध्वनि है वह वर्णात्मक स्फोट का ग्रहण कराती है। ऐसा है कि स्फोट के जो है ना आचार्यों ने 8 प्रकार के भेद बताए हैं, उसमें मुख्य जो है वह है वर्ण स्फोट, पद स्फोट और वाक्य स्फोट। क्या क्या है? वर्ण स्फोट, पद स्फोट और वाक्य स्फोट। अब इसी में जाति और व्यक्ति का भेद करेंगे ना, तो फिर दोनों तीनों जो है दो दो प्रकार का हो जाता है। तो जैसे वर्ण हुआ तो वर्ण जाति स्फोट और वर्ण व्यक्ति स्फोट, एक बार जाति लगा दीजिए वर्ण में और एक बार व्यक्ति लगा दीजिए। ऐसे ही पद है तो पद जाति स्फोट और पद व्यक्ति स्फोट। इसी तरह से वाक्य है तो वाक्य जाति स्फोट और वाक्य व्यक्ति स्फोट। तो इस तरह से वर्ण स्फोट, पद स्फोट और वाक्य स्फोट, ये तीन हो गए। और जाति व्यक्ति के भेद से तीनों दो दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वर्ण जाति स्फोट, वर्ण व्यक्ति स्फोट, पद जाति स्फोट, पद व्यक्ति स्फोट, वाक्य जाति स्फोट, वाक्य व्यक्ति स्फोट। इस तरह से ये 6 प्रकार के स्फोट हो गए। और 2 प्रकार के होते हैं और अखंड पद स्फोट, अखंड वाक्य स्फोट। क्या मैंने कहा? अखंड पद स्फोट और अखंड वाक्य स्फोट। इस तरह से 6 और 2 ये हो गए, तो 6 2 8, ये 8 तरह के भेद जो है आचार्यों ने बताए हैं। आप जब परम लघु मंजूषा सब पढ़ेंगे तो उसमें ये भेद आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब इसमें आपने अभी ये, मैंने इसलिए यहाँ पर ये चर्चा की क्योंकि यहाँ पर वर्णात्मक स्फोट की बात आ रही है। तो वर्णात्मक स्फोट जो है वह उसका ग्रहण कौन कराता है? प्राकृत ध्वनि ग्रहण कराती है या वैकृत ध्वनि ग्रहण कराती है? तो इसी बात पर कारिका में आया है कि वर्णस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि रुच्यते। कि वर्णस्य माने वर्णात्मक स्फोटस्य, वर्णात्मक स्फोट के ग्रहण में हेतु कारण कौन होती है? तो प्राकृतो ध्वनि ही, प्राकृत ध्वनि जो है वह कारण होती है। यहाँ एक चीज और जान लीजिए कि हिंदी में ध्वनि शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है और संस्कृत में ध्वनि शब्द जो है पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतो ध्वनि ही कहा, प्राकृता ध्वनि ही नहीं कहा, क्योंकि पुल्लिंग होता है ना। तो इसलिए जब संस्कृत को हिंदी में पढ़ाते हैं तो कभी कभी हिंदी की तरह स्त्रीलिंग में व्यवहार भी होता है और कभी कभी संस्कृत की तरह पुल्लिंग में भी व्यवहार होता है। इसलिए मेरे मुंह से भी आप कभी कभी पुल्लिंग में भी सुनेंगे और कभी कभी स्त्रीलिंग में भी सुनेंगे। तो यहाँ वर्णस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि रुच्यते, वर्णात्मक स्फोट का जो ग्रहण होता है, उसका जो व्यंजक होता है वर्णात्मक स्फोट का, वह प्राकृत ध्वनि है। और तो ये तो प्राकृत ध्वनि जो है वह वर्णात्मक स्फोट की व्यंजिका हो गई, को व्यक्त करने वाली हो गई। और वैकृत ध्वनि का क्या क्या काम है? तो वह वैकृत ध्वनि जो है वह स्फोट की व्यंजक नहीं है, वह क्या है? तो वृत्ति भेदे निमित्तत्वम। वह जो वैकृत ध्वनि है वह वृत्ति भेद में निमित्त होती है, वृत्ति भेद में कारण होती है। ये वृत्ति भेद क्या है? मैंने पहले बताया है कि द्रुत, मध्य और विलंबित। द्रुत वृत्ति, मध्य वृत्ति और विलंबित वृत्ति। तो इन वृत्तियों में जो है ना वह कारण होती है वैकृत ध्वनि, स्फोट के ग्रहण में वैकृत ध्वनि कारण नहीं होती। वही कहा कि वृत्ति भेदे निमित्तत्वम वैकृतः प्रतिपद्यते, वैकृतः माने वैकृतः ध्वनि ही, प्रतिपद्यते माने ज्ञायते, क्या क्या कैसे कथम ज्ञायते, तो वृत्ति भेदे निमित्तत्वम माने वृत्ति भेद में वैकृत ध्वनि कारण होती है, ऐसा जो है ज्ञात होता है। तो दो तरह की ध्वनियां हो गई, प्राकृत ध्वनि और वैकृत ध्वनि। उसमें प्राकृत ध्वनि जो है वह वर्ण ग्रहण में हेतु है और वैकृत ध्वनि जो है वह वृत्ति भेद में हेतु है। ये तो कारिका के अनुसार आपने समझा, और समझने के लिए मैंने समझाया कि पहली बार जो ध्वनि उत्पन्न होती है मुख में वह प्राकृत ध्वनि होती है, और उस ध्वनि होने के बाद जब वर्णात्मक स्फोट अभिव्यंजित हो जाता है तो वह वर्णात्मक स्फोट की जो उपलब्धि होती है माने थोड़ी देर तक सुनाई देना, ज़्यादा देर तक सुनाई देना, ये सब जो काम होता है ये काम होता है वैकृत ध्वनि का। तो ये आप क्लियर कर लिए कि प्रथमतः जो ध्वनि उत्पन्न हुई वह हो गई प्राकृत ध्वनि, और प्राकृत ध्वनि उत्पन्न होने के बाद ये वर्णात्मक स्फोट का ग्रहण होता है, और वर्णात्मक स्फोट का ग्रहण होने के बाद उसकी जो उपलब्धि होती है, उसकी जो स्थिति होती है, द्रुत स्थिति, मध्य स्थिति, विलंबित स्थिति, उसका कारण जो है वह वैकृत ध्वनि है। वैकृत ध्वनि वास्तव ये जो है स्फोट का व्यंजक नहीं होती है। अब इन्हीं बातों को अगली कारिकाओं में भी बताया जाएगा। शब्दस्य ऊर्ध्वम अभिव्यक्ते हे वृत्ति भेदे तु वैकृताः, ताकि वैकृत ध्वनि जो है वह वृत्ति भेदे तु वैकृता, वृत्ति भेद में जो है ना वैकृत कारण होता है। और शब्दस्य ऊर्ध्वम अभिव्यक्ते हे माने एक बार, शब्दस्य माने स्फोटस्य, एक बार जब स्फोट की जो है ना उपलब्धि। अच्छा, एक चीज़ और मैं फिर से बता दूं, पहले भी मैंने बताया होगा कि शब्द दो होते हैं, एक आंतर शब्द और एक बाह्य शब्द। आंतर शब्द माने अंतः में रहने वाला और एक बाहर में रहने वाला। तो स्फोट जो है ना वह आंतर शब्द है, और वही जो आंतर स्फोट शब्द है वही नित्य शब्द होता है, और उसकी जब अभिव्यक्ति हो जाती है, उसकी अभिव्यक्ति कौन करती है, ध्वनि, प्राकृत ध्वनि उसकी अभिव्यक्ति करती है। तो यहाँ पर कारिका में गौर करिए, शब्दस्य ऊर्ध्वम अभिव्यक्ते, इसमें ऊर्ध्वम को बाद में रखिए और अभिव्यक्ते को पहले लाइए, कि शब्दस्य अभिव्यक्ते ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने पश्चात, माने शब्द की अभिव्यक्ति के बाद। कौन से शब्द की? वह जो आंतर स्फोटात्मक शब्द है उसकी अभिव्यक्ति होने के बाद। उसकी अभिव्यक्ति होती है प्राकृत ध्वनि से, और प्राकृत ध्वनि से जब उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है उसके बाद वृत्ति भेद जो होता है, द्रुत मध्य विलंबित वृत्तियां जो होती हैं उसमें वैकृताहा, उसमें वैकृत ध्वनि जो है वह कारण होती है। ध्वनयः समुपोहन्ते, वैकृताहा ध्वनयः समुपोहन्ते, समुपोहन्ते माने कारणानि भवन्ति। वैकृत ध्वनियां जो हैं ये वृत्ति भेद में कारण होती हैं, और ये वृत्ति भेद होता कब है? जब स्फोट की एक बार अभिव्यक्ति हो जाती है प्राकृत ध्वनि के द्वारा। आगे कहते हैं स्फोट आत्मा तैर न भिद्यते, ताकि उस वृत्ति भेद होने से स्फोट की जो आत्मा है, आत्मा माने स्वरूप, स्फोट का जो स्वरूप है वह भिन्न नहीं होता उससे, वैकृत ध्वनि से केवल वृत्ति में भेद होता है, या वृत्ति भेद होने से वैकृत में भेद होता है, इन दोनों के कारण स्फोट में कोई जो है ना चेंज नहीं आता है। वह जो स्फोट जो है वर्णात्मक जो प्रतीत होता है वह किसके कारण? प्राकृत ध्वनि के कारण, क्योंकि प्राकृत ध्वनि जो होती है वह वर्णात्मक ही होती है, और वह वर्णात्मक स्फोट को अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्त होने के बाद जो उसका वृत्ति भेद होता है उसमें वैकृत ध्वनि कारण है, और इस वृत्ति भेद होने से स्फोट आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्फोट पर कोई जो है इसका दुष्प्रभाव या सुप्रभाव नहीं होता। इस तरह से यहाँ पर प्राकृत और वैकृत ध्वनि के बारे में बताया आपको कि प्राकृत ध्वनि का क्या फंक्शन है और वैकृत ध्वनि का क्या फंक्शन है। अब यहाँ पर जो है ना आपने देखा कि स्फोट का जन्म नहीं होता, क्योंकि स्फोट तो नित्य है, स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, स्फोट का आविर्भाव होता है, स्फोट उत्पन्न नहीं होता है। तो ये जो है इसको कहते हैं अभिव्यक्तिवाद। नित्य शब्द को अगर हम नित्य मानेंगे ना, तो शब्द का तो जन्म होगा नहीं, तो क्या होगा, शब्द का जन्म नहीं होगा तो शब्द का प्रादुर्भाव होगा, शब्द का आविर्भाव होगा। ठीक है, जैसे तिल को पिरोने से तेल निकलता है, गन्ने को पिरोने से रस निकलता है, तो वह जो मशीन है वह मशीन रस को पैदा थोड़े करता है, वह गन्ना में जो रहने वाला रस है उस रस को प्रादुर्भूत कर देता है, जो पहले से रहता है उसको इकट्ठा करके निकाल देता है, यही करता है ना। तो वह रस का वहाँ जन्म नहीं होता उस मशीन में, उस मशीन में क्या होता है, रस का प्रकटीकरण होता है, रस प्रकट रूप में उपलब्ध होता है। तो इसी का नाम है अभिव्यक्तिवाद। जब शब्द को हम नित्य मानेंगे तो शब्द का जन्म नहीं मानेंगे, शब्द की उत्पत्ति नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, शब्द की अभिव्यक्ति मानेंगे। और यह जो अभिव्यक्तिवाद है ये तीन प्रकार से आचार्यों ने अभिव्यक्ति को स्वीकार किया, इसलिए इस कारिका में 19वीं कारिका में अंत में है त्रयः अभिव्यक्तिवादिनाम। अभिव्यक्तिवादियों का तीन मत है। अब ये तीन तरह का मत कौन सा है, ये परीक्षा में भी पूछ सकता है कि त्रयोभिव्यक्तिवादी नाम अभिव्यक्तिवादी के तीन मत कौन कौन है। तो ऐसे में एक दो लाइन में ही समझा देता हूँ, फिर कारिका में भी पढ़ूंगा। ऐसा है कि एक हो गया इंद्रिय और एक हो गया शब्द। अब कुछ विद्वान जो है ना मानते हैं कि ध्वनि के द्वारा इंद्रिय का संस्कार होता है, कुछ विद्वान मानते हैं कि ध्वनि के द्वारा शब्द का संस्कार होता है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि दोनों का संस्कार होता है ध्वनि के द्वारा, इंद्रिय का भी और शब्द का भी। बस यही तीन मत हो गए अभिव्यक्तिवादियों के। ये अभिव्यक्तिवाद फिर से एक बार सुन लीजिए, अभिव्यक्तिवादी के तीन मत हैं। प्रथम मत है कि ध्वनि के द्वारा इंद्रिय का संस्कार होता है। किस इंद्रिय की बात हो रही है यहाँ पर, श्रोत्रेंद्रिय की बात हो रही है, क्योंकि शब्द को सुनने वाली इंद्रिय कौन है, श्रोत्रेंद्रिय ही तो है। तो अभिव्यक्तिवादी का एक मत है कि ध्वनि के द्वारा श्रोत्रेंद्रिय का संस्कार होता है, उसके बाद शब्द की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा मत है कि ध्वनि के द्वारा श्रोत्रेंद्रिय का संस्कार होता है और फिर उसके बाद शब्द की अभिव्यक्ति होती है। और तीसरा मत है अभिव्यक्तिवादियों का कि ध्वनि के द्वारा इंद्रिय का भी संस्कार होता है और शब्द का भी संस्कार होता है, और उसके दोनों के संस्कार होने के बाद जो है शब्द की अभिव्यक्ति होती है। यही है तीन तरह का मत। अब कारिका में देख लीजिए, इंद्रियस्यैव संस्कारः, माने इंद्रिय का ही संस्कार किया जाता है ध्वनि के द्वारा, ये एक मत हो गया। शब्दस्यैव, शब्दस्य एव माने केवल शब्द का ही संस्कार होता है ध्वनि के द्वारा, ये दूसरा मत हो गया। उभयस्य वा अथवा उभयस्य अथवा दोनों का ही संस्कार होता है ध्वनि के द्वारा, ये तीसरा मत हो गया। क्रियते ध्वनिभिः वादाः, माने ध्वनिभिः संस्कारः क्रियते, ध्वनि के द्वारा ये संस्कार किए जाते हैं हम तीन टाइप के। इति त्रयः अभिव्यक्तिवादिनाम, ये तीन प्रकार का जो है अभिव्यक्तिवादियों का मत है। अब ये जो तीन प्रकार के मत हैं, इसी का विश्लेषण आगे करेंगे कि इंद्रियस्यैव संस्कारः समाधानाञ्जनादिभिः, विषयस्य तु संस्कारः तद्गन्ध प्रतिपत्तये, का कि इंद्रिय का ही संस्कार होता है, देखा जाता है व्यवहार में। जैसे आँख में अगर रोशनी कम हो तो व्यक्ति सुरमा लगाता है, काजल लगाता है, और ये सब लगाने से ना उसकी रोशनी जो है आँख की बढ़ जाती है। तो घटपटादि को जो है ना आँख देखता है, तो घटपटादि का संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि नेत्रेंद्रिय का, चक्षुरेंद्रिय का संस्कार किया जाता है, और उस संस्कार होने से घट और पट को जो है ना आँख जो है देखने लग जाती है। तो जैसे वहाँ पर चक्षुरेंद्रिय का संस्कार होता है, विषय का संस्कार नहीं होता, उसी तरह से यहाँ पर भी ध्वनि के द्वारा श्रोत्रेंद्रिय का ही संस्कार होता है, शब्द का संस्कार नहीं होता, ये प्रथम मत है। इसीलिए कहा इंद्रियस्यैव संस्कारः समाधान अंजनादिभिः, समाधान मतलब इलाज किसके द्वारा करते हैं, अंजन आदि भी, अंजन आदि के द्वारा जो है नेत्रेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय का संस्कार करते हैं। तो अंजन हो गया वही सूरमा, और आदि से ले लीजिए जैसे त्रिफला चूर्ण है तो उसके जल से भी आँख वाँख को धोया जाता है, उससे भी जो है ये आयुर्वेद में बहुत सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं जिसमें कि चक्षुरेंद्रिय का संस्कार होता है और वो संस्कार होने से चक्षुरेंद्रिय की रोशनी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो उसी को उदाहरण के तौर पर देते हुए प्रथम मत वाले ने कहा कि जैसे चक्षुरेंद्रिय का ही संस्कार होता है, घटपटादि विषय का संस्कार नहीं होता, उसी तरह से ध्वनि के द्वारा जो है श्रोत्रेंद्रिय का ही संस्कार होता है, शब्द का संस्कार नहीं होता है। अब दूसरा जो मत है जिसने कहा था कि शब्द का ही संस्कार होता है, इंद्रिय का नहीं होता, तो शब्द यहाँ पर क्या है, विषय रूप में है, इंद्रिय से जिसका ग्रहण हो उसको हम विषय कहते हैं। तो श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है तो शब्द हो गया विषय। तो दूसरा जो मत था कि शब्द का ही संस्कार होता है, मतलब विषय का ही संस्कार होता है, इंद्रिय का संस्कार नहीं होता, इसमें भी उदाहरण दिखा रहे हैं कि तद गंध प्रतिपत्तये, कहा कि ये जो मतलब घरे सब जो बनते हैं तो घड़ा जब आवास निकलता है थोड़ा गर्म गर्म रहता है तो उस पर हम जब पानी छींटते हैं तो उसमें से मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध जो है ना खुशबू निकलती है। तो अब वहाँ पर जो है ना नासिका इंद्रिय जो है उसका संस्कार नहीं किया गया, नाक पर जल नहीं फेंका गया, जल फेंका कहाँ गया, विषय पर, घटादि पर, विषय घटादि जो विषय है उसके ऊपर जल फेंका गया, घट आदि का संस्कार किया गया जल फेंक करके, और उससे जो है ना गंध जो है ना अभिव्यक्त हो गया, गंध प्रकट हो गया। तो इस उदाहरण के द्वारा ये सिद्ध होता है कि इंद्रिय का संस्कार नहीं होता बल्कि विषय का ही संस्कार होता है, जैसे वो जो घरा आदि जो है, या फिर ये देख लीजिए ना बरसात, जब पहली बार बरसात होती है तो जब पानी पड़ता है मिट्टी पर धरती पर तो उसमें से एक विशेष प्रकार का गंध जो है वो निकलना शुरू होता है। तो वहाँ पर विषय जो है मिट्टी, उस मिट्टी का ही संस्कार किया गया जिस पर बारिश का पानी पड़ा और उससे गंध जो है ना अभिव्यक्त हो गया। तो इस तरह इस उदाहरण के द्वारा ये सिद्ध होता है कि विषय का ही संस्कार होता है। तो जय तो दोनों के उदाहरण मिल गए, इंद्रिय का संस्कार होता है उसका उदाहरण मिल गया वो सुरमा उरमा लगाना, और दूसरा गंध की दृष्टि से अगर देखेंगे तो गंध की का जो प्रादुर्भाव होता है उसमें विषय का ही संस्कार होता है, इंद्रिय का संस्कार नहीं होता। आज का पाठ का टाइम जो है ना बीत रहा है तो आज हम यहीं ब्रेक करते हैं।